तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी के जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी मुझे आगे तेरे साथ बहना है जाना तुम्हें तो है ये बात जाने के जिंदगी कैसे बनती सुहानी मुझे हर पल तेरे साथ रहना है तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी ये दुनिया मिले ना मिले हमको खुशियाँ भगा देंगी हर गम को तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो मेरे लिए तुम काफी हो मेरे लिए तुम काफी हो मेरे लिए तुम काफी हो
ओम शांति सत्य का खोज ही एक युवक अपने सत्य अन्वेषण में खोजता खोजता किसी सद्गुरु के पास पहुंचा और उस सत्य के खोजी ने उस गुरु से पूछा आत्मा क्या है परमात्मा क्या है योग क्या है जीवन का सत्य क्या है मैं आरंभ कहां से करूं गुरु ने कहा निकट के जलप्रपात की ध्वनि को तुम सुन सकते हो उस युवक ने कहा हां भली भांति सुन रहा हूं उस गुरु ने कहा बस उस जलप्रपात की ध्वनि से ही शुरू करो क्योंकि जलप्रपात की वह ध्वनि प्रकृति की वह ध्वनि ही द्वार है परमात्मा तक पहुंचने का प्रकृति ही द्वार है जो तुम्हें ईश्वर के राज्य तक ले जाएगी उस ध्वनि को सुनो उसकी आवाज को सुनो बस वही से मार्ग मिलेगा प्रकृति के उस मौन को सुनो जिसने प्रकृति के उस मौन को सुन लिया उस साउंडलेस साउंड को उस चैंटलेस चैंट को उस अजपा जाप को सुन लिया वो परमात्मा के द्वार तक पहुंच जाएगा प्रकृति हमें जोड़ती है उस परमात्मा से ये सारा विस्तार जो कि इस कलयुग के अंत में भी इतना सुंदर है वो हमें ले जाती है देह से पार देह से दूर देह से परे जाना प्रकृति के सानिध्य में बहुत सुलभ है वायु को देखते हुए ब्रह्मा बाबा ने कभी कहा था मीठे बच्चे योगाभ्यास करने से आत्मा में शरीर भान नहीं रहता और उसमें पापों का बोझ भी उतरता है अतः योग युक्त होने से मनुष्य स्वयं को वायु के समान हल्का अनुभव करता है उसे थकावट महसूस नहीं होती सुस्ती नहीं आती और शरीर की स्थूलता नहीं खींच सकती बाहर में बेहद में खुली हवा में जाने से दिल को फरहत अर्थात खुशी महसूस होती है अंदर बंद कमरे में ऐसे लगता है जैसे कि हम गर्भ जेल में बैठे हैं बंद कमरे में बैठे हैं ऐसे जैसे कि गर्भ जेल में बैठे हैं जब हम कराची में थे तो बहुत बार बाबा के साथ हम सागर के किनारे पर जाकर बैठते थे तब बाबा मधुर और स्नेह युक्त शब्दों में कहते थे बच्चे सागर की लहरें देख रहे हो देखो, क्या करो, देखो सागर की लहरें कैसे बच्चों के पाँव तक आती है और फिर वापस चली जाती है। आप भी तो सागर, ज्ञान सागर के बच्चे हो। आप इस सागर से यह गुण ग्रहण करो कि अगर आपके मन में कभी माया की लहरें उठे तो आप भी उन्हें ऐसे ही वापस लौटा दो। बच्चे देखो, सागर में किचड़ा अथवा कूड़ा डालते हैं तो वह सागर के अंदर नहीं जाता बल्कि ऊपर ऊपर ही रह जाता है। इस सागर की तरह आप बच्चे भी अपना स्वभाव बनाओ, अपने मन के अंदर कोई भी किचड़ा ठहरने नहीं दो। देखो बच्चों, गोताखोर सागर में काफी नीचे जाकर हीरे मोती लाल आदि ले आता है। इसी तरह आप भी विचार सागर मंथन कर, आप भी ज्ञान सागर शिव बाबा के ज्ञान की गहराई में जाओ तो आपको भी बहुत अनमोल हीरे रत्न और मोती मिलेंगे। बच्चे देखो सागर कितना शांत, गंभीर, प्रशांत, मर्यादित, भीतर से धैर्यवत भी है। भले ही ऊपर से लहरें हैं परंतु नीचे देखो वह सदा शांत है। आप भी ऐसे शांत तथा धैर्यवत हो जाओ। सागर पर पड़े शालिग्रामों की ओर इशारा करते बाबा, यह देखो पानी की लहरें और छींटों में पत्थर भी घिस घिस कर पूजनीय शालिग्राम हो गया। ऐसे ही आप भी कठिनाइयों को सहन करेंगे और ज्ञान सागर की लहरों में लहराएंगे तो एक दिन आप भी साफ और पूजनीय अर्थात पावन बन जाएंगे। प्रकृति चारों ओर बाहें फैलाए हुए है, आह्वान कर रही है, आ जाओ। परंतु मनुष्य ने क्या किया है, प्रकृति को जीतने का प्रयास किया है, उसका प्रयत्न बलात् प्रयत्न है, उसकी हसरत जीतने की है, वो हासिल करना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। जब तक आदान प्रदान ना होगा तब तक प्रकृति और मनुष्य के बीच जो वर्तुल है वो पूरा नहीं होगा। हम कुछ दे, वो कुछ दे, ये काम होना चाहिए। पर मनुष्य ने क्या किया, धरती के साथ केवल लिया है, उसकी छाती पर घाव किए हैं, बस लेता रहा है उससे, वो हमें देती रही और हम उससे लेते रहे, और हमने डाला क्या, प्लास्टिक। केमिकल्स क्या बनाया है हमने, फैक्ट्रीज, प्रदूषण। मनुष्य और प्रकृति के बीच एक गहरा नाता है। जब तक व्यक्ति इस नाते को नहीं जानता तब तक वो कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकता। इसलिए अपनी थाली में सबसे ज्यादा आहार कौन सा होना चाहिए, विटामिन एन, बाकी विटामिन कम हुए तो चलेगा पर इसकी मात्रा को बढ़ाओ, विटामिन एम अधिक से अधिक हो, और जो ले रहे उसका डोज बढ़ाओ। जो जितना अधिक विटामिन ए एन का सेवन करेगा उतना अधिक स्वस्थ होगा, निरोगी होगा, प्रकृति के समीप होगा, निकट होगा, और जो प्रकृति के जितना निकट है प्रकृति स्वयं उसकी देखभाल करेगी। इसलिए आज से कितनी बार खाओगे विटामिन एन, कितनी बार सेवन करोगे, जितना सेवन करना चाहो उतना करो, इसमें कभी भी टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती। विटामिन एन लेते ही रहना है, लेते ही रहना है, लेते ही रहना है, हर रूप में लो, टैबलेट रूप में, इंजेक्शन रूप में, सिरप रूप में, जितना ले सको, जब ले सको, जहां ले सको, सेवन चालू ही रहे, ओवरडोज कभी नहीं होगा। क्योंकि पाया गया है जो ये लोग कम खाते हैं विटामिन एन वो प्राय रुग्ण होते हैं, उदास होते हैं, दुखी होते हैं। सुना ना गर्भजेल पीड़ा होती है गर्भजेल में। बाबा एकांत में जाके समुद्र किनारे बैठते थे कराची में। क्यों, क्या था वहां? पक्षियों की आवाजों को सुनो, बहती हुई हवा, डोलते हुए पत्ते, ये द्वार है परमात्मा का। अनादरा से दिखता हुआ वो दृश्य, टोडरॉक से दिखता हुआ नक्की, रात का वो चंद्रमा का प्रतिबिंब नक्की झील में, वो निस्तरंग झील, ये द्वार है परमात्मा की। शांत कर देते हैं मन को, स्थिर कर देती है चेतना, चेतना को स्थिर कर देते हैं ये सारी चीजें। और उस प्रशांत महासागर परमात्मा की झलक दिखाई पड़ती है। प्रुशिया का राजा था कभी फ्रेडरिक द ग्रेट, जर्मनी को पहले प्रुशिया कहा जाता था, आसपास का इलाका। उसने एक बार देखा ये पक्षी इतने छोटे छोटे आते हैं और अनाज खाच के चले जाते हैं, इतने सारे पक्षी और इतना अनाज मेरे राज्य का खा जाते, इतने अदने और इतना अनाज खा लेते, इनकी ये जरूरत। आदेश दिया कि जो भी पक्षियों को मारेगा उसे इनाम दिया जाएगा। सारे नगरवासी शिकारी बन गए और देखते ही देखते पूरा राज्य पक्षी विहीन हो गया। जीत हुई, प्रकृति जीत, खुशी हुई, मैं जीता, प्रकृति को पराजित कर दिया। अब एक भी पक्षी नहीं है, कोई पक्षी नहीं है दाना खाने के लिए राज्य में। पर ये क्या, अगले ही साल गेहूं की फसल नष्ट हो गई, क्योंकि वो जो कीड़े थे खेतों में, वो जो टिड्डियां जो कि पक्षी आकर खा जाते थे, उन जंतुओं ने फसलों को नष्ट कर दिया, फसल ही नहीं उगी। दुखी हुआ, दूसरे राज्य से पक्षी मंगाने पड़े। जब जब प्रकृति से संबंध टूटेगा, प्रकृति क्रुद्ध होगी, बदला लेगी, अन्यथा प्रकृति जैसा मित्र कोई नहीं, पर्यावरण। रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता है, बंगाली में है, तुमी नब नब रूप ऐसो प्राणे, ये उसका शीर्षक है, गीतांजलि पोएम नंबर 6। आओ नव नव रूपों से तुम प्राणों में, आओ गंधों में, वर्णों में, गानों में, आओ अंगों में तुम पुलकित स्पर्शों में, आओ हर्षित सुधा सिक्त सुमनों में, आओ मुग्ध मुदित इन दोनों नयनों में, आओ नव नव रूपों में तुम प्राणों में। कवि कहता है तुम आ जाओ, कहाँ आओ, इन प्राणों में आ जाओ। किस रूप में आओ, हर दिन नए रूप में आओ, गंधों में आओ, वर्णों में आओ, गानों में आओ, अंग अंग में आओ, पुलकित स्पर्श में आओ, हर्षित सुधा सिक्त सुमनों में आओ, मुग्ध मुदित इन दोनों नयनों में आओ, आओ निर्मल उज्जवल कांत हे प्रिय आओ, आओ सुंदर स्तिग्ध सुंदर प्रशांत आओ, आओ आओ हे चैत्य हे वैचित्र विधानों में, आओ सुख दुखों में तुम आओ, आओ मर्मों में आओ, नित्य नित्य ही सारे कर्मों में आओ, आओ सर्व कर्म अवसानों में आओ, नव नव रूपों में तुम प्राणों में। तुमी नब नब रूपे ऐसो प्राणे, आओ। प्रकृति का क्या करना है, आह्वान। तो कल हमने देखा था, क्या देखा था कल, प्रकृति का प्रेम, प्रकृति का सानिध्य, प्रकृति का सम्मान, प्रकृति का धन्यवाद, ये दो बातें देखी थी। आज हम देखेंगे प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति की सफाई। आज से व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें रोज एक टिप भेजी जाएगी जिसको कहेंगे लाइफ सस्टेनेबिलिटी टिप, कि प्रकृति की रक्षा हम कैसे करें। हर दिन कुछ ना कुछ एक नया होगा, आज से वो चालू होगा, इंग्लिश में होगा। हर दिन कुछ ना कुछ नई बात होती होगी जो हमें अपने कमरे में करनी है या बाहर प्रकृति के साथ करनी है, हर दिन नई नई होगी। तो सबसे पहला तो हमें प्रकृति को दूषित नहीं करना है किसी भी तरीके से, प्रकृति को हानि नहीं पहुंचानी है किसी भी तरीके से। और सबसे ज्यादा हानि हम तब पहुंचाते हैं जब कोई फूल को तोड़ते हैं। मम्मा धरती पर चलती थी, आवाज नहीं होता था, चप्पल की भी आवाज नहीं, धरती को दुख होता है, इतना अहिंसक भाव। क्यों किसी फूल को तोड़े अपनी खुशी के लिए, क्यों किसी को दुख दे, क्यों किसी कली को तोड़े, क्यों किसी झाड़ को तोड़े, उसको भी दुख होता है। लूथर बर्बैंक था विदेश में, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। उसने एक कैक्टस के साथ 6 मास तक बातें की, हे मेरे दोस्त कैक्टस, कितने तुमको स्पाइन है, काटे हैं। और उसने पहली बार मनुष्य इतिहास में ऐसा कैक्टस बनाया, स्पाइनलेस कैक्टस। इंटरनेट पे चित्र देख सकते हो उसका, खड़ा है पीछे स्पाइनलेस कैक्टस। द फर्स्ट कनेक्शन ऑफ मैन विथ प्लांट किंगडम। उससे बातें करते करते प्लांट टेलीपैथी, झाड़ से बात करना, झाड़ को महसूस करना। यदि तुम झाड़ के दुखों को महसूस करोगे तो वो भी तुम्हारे दुख को महसूस करेगा। मनुष्य को क्या बताए अपने दुख और अपनी पीड़ा, झाड़ को बताओ, झाड़ से बातें करो। एक व्यक्ति ने पूरी किताब लिखी है झाड़ पर, पूरी की पूरी किताब ही लिख डाली। इन द कंपनी ऑफ ट्रीज किताब का नाम है, इन द कंपनी ऑफ ट्रीज, इतनी बड़ी किताब ही लिख डाली पूरी की पूरी। जो कनेक्शन टूटा है उसे फिर से जोड़ना है। तो सबसे पहला संकल्प, मुझे किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी है, कुछ भी पर्यावरण में फेंक देना नहीं है। जो भी हम फेंके वो ऐसा हो बायोडिग्रेडेबल। वो रोज की जो टिप्स भेजेंगे उसमें हर दिन एक नई पॉइंट होगी जो उस दिन के लिए लागू होगी और उसको फॉलो करना है। हर दिन इतनी सारी पॉइंट्स होगी, आज से चालू होगा 1 साल तक या उससे भी ज़्यादा, हर दिन के लिए 1 पॉइंट। वो आप नहाते कैसे उसकी पॉइंट होगी, ब्रश किससे करते हैं उसकी पॉइंट होगी, खाते क्या है उसकी पॉइंट होगी, बालों को क्या लगाते हैं, सब कुछ जो पर्यावरण से जुड़ा है वो सारी पॉइंट्स होगी उसमें। हर दिन एक एक पॉइंट होगी और उसको पढ़ना है। आज एयर इंडेक्स की पॉइंट है जो भेजेंगे। एयर इंडेक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो आज की जो पॉइंट है वो है अधिक से अधिक क्या करो, झाड़ लगाओ, प्लांट ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ देम। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI। AQI पता है क्या होता है? AQI जितना ज्यादा उतनी हवा प्रदूषित। AQI रहना चाहिए 50 के अंदर। आज की तारीख में, आज तारीख है 12, आज का माउंट अबू का AQI है 53। हम लोग सेफ जोन में है, हम लोग सेफ जोन में है। जब AQI 0 से 50 है तो अच्छा है, गुड। 51 से 100 मॉडरेट, 50 100 के ऊपर चला गया मतलब अनहेल्दी, फॉर सेंसिटिव ग्रुप, कुछ कुछ लोगों के लिए 150 के ऊपर 200 तक अनहेल्दी, 200 के ऊपर 300 तक वेरी अनहेल्दी, और 300 के ऊपर तो इमरजेंसी है, डेंजरस। शहरों में AQI बहुत ज़्यादा है, इतनी प्रदूषित वायु है। माउंट का आज का AQI केवल 53 है। कितनी शुद्ध हवा है यहाँ पर, बिकॉज क्यों, क्योंकि चारों ओर पहाड़ पहाड़ है, पेड़ ही पेड़ है। जितने अधिक पेड़ उतने हम सुरक्षित। पेड़ों में ऊर्जा है, जैसे कल भी कहा था, एक पूरा दिन यदि पेड़ के नीचे गुजारो, पूरा दिन यदि जंगल स्नान में गुजारो, तो कुछ और ही हो जाता है। कुछ ऐसे चेंजेस, कुछ ऐसी बातें पता चलती है जो पहले कभी नहीं पता चली थी। जैसे एक स्टडी की गई कि जो शहरों की लड़कियां, छोटी लड़कियां, उन पर स्टडी गई यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय ने। उन्होंने देखा उनकी जो खिड़की है, खिड़की के बाहर हरियाली है, कुछ जो हॉस्टल की कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, और कुछ कन्याएं उनके खिड़कियों के बाहर हरियाली नहीं है। तो जिनके खिड़कियों के बाहर हरियाली थी उनमें सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा देखा गया, और जिनकी खिड़कियों के बाहर हरियाली थी उनमें डिसिप्लिन ज्यादा, और जिनमें नहीं थी उनमें थोड़ा कम। एक अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है बच्चों में। एक मिनट बच्चा एक जगह नहीं टिकता है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। उसको कहो ये पढ़ो, एक लाइन पढ़ता है, अटेंशन उसका एक मिनट भी अटेंशन नहीं रख पाता है कहीं। उसको कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उसमें देखा गया ऐसे जो बच्चे हैं उनको जैसे जैसे ग्रीन एनवायरनमेंट में लाया गया, ग्रीन आउटडोर्स में लाया गया, उनका मन शांत होते गए। बहुत सारी स्टडीज की गई उनके ऊपर। उसी तरह अगर हम 20 मिनट तक किसी जंगल से गुजरते हैं, या फिर यहां यह देखा गया कि एक लोगों का ग्रुप था, वो 3 दिन के लिए फॉरेस्ट ट्रिप निकाली उन्होंने, तो उनके शरीर में 50% इंक्रीज हो गया नेचुरल किलर सेल्स में, जो हमारे सर में, शरीर में नेचुरल एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, या फिर जिसको कहेंगे नेचुरल पेन किलर्स प्रोड्यूस होते हैं, एंडोर्फिन्स, उनकी संख्या बढ़ गई जंगल से गुजरते गुजरते ही, क्योंकि इतनी एनर्जी उस जंगलों में एनर्जी होती है, क्योंकि जंगल वो स्थान है जहां मनुष्य के हाथ अभी पहुंचे नहीं है, क्रूर हाथ, अनटच्ड। वहां से गुजरते गुजरते ही, परंतु एक ही ध्यान रखना है, मौन हो, प्रकृति से जुड़े हुए हो। बातें करते करते जाएंगे और बातें करते आएंगे तो हमारा ध्यान तो प्रकृति से जुड़ा ही नहीं, संपूर्ण मौन और उस आवाज को सुनना है उस मौन में, तो उसकी ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश होगी, हम जुड़ जाएंगे उसके साथ, और उसको ज्ञान से जोड़ते जाना है, हर चीज को ज्ञान से जोड़ते जाना है। हर चीज देखते हुए प्रकृति की, बाबा की याद आए, ज्ञान की याद आए, ज्ञान सागर के ज्ञान की याद आए। वायु को देखो तो क्या याद आए, वायु एक जगह नहीं टिकती, योगी भी कहीं एक जगह अटैच नहीं हो जाता है, वायु इधर से उधर सुगंध ले जाती है। पक्षियों को देखो, बाबा की याद आए, ज्ञान की याद आए। टिड्डियों को देखो, कौन सी बिल्ली बाबा कहते थे, ठाठरी बिल्ली, क्या करती हो, क्या करती है। बंदर को देखो, कितना मोह, कितना काम, कितना क्रोध, कितना लोभ, कितना अहंकार, कितना ही हर गुस्सा, हर चीज उसमें ज्यादा है, ईर्ष्या, सब कुछ उसमें ज्यादा है। सीखो उनसे कि हमें ऐसा नहीं बनना है। जीव जंतुओं से सीखो, मोर से सीखो, डेल से सीखो, कीड़े से सीखो, पतंगों से सीखो, सर्प से सीखो, सांप से भी सीखो, क्या सीखोगे, गधे से सीखो, क्या सीखोगे गधे से, खोदरे के पुट, गधे के पुत्र बाबा की मुरलियों में आता है, क्या सीखो, इतना अच्छा सजाते हैं और वापस लोटपोट हो जाता है, लिथड़ जाता है। हर चीज से सीखो, ऊंट पक्षी से सीखो। उड़ो, कैसे उड़ू? मैं ऊंट हूं। अच्छा बैठो, कैसे बैठू? मैं पक्षी हूं, बहानेबाजी। ऊंट से सीखो, ऊंट से क्या सीखो? जहां पेशाब करता है वहीं पे पाव फिसल जाता है उसका, काम विकार। चात्रक पक्षी से सीखो, उसको केवल वो पानी चाहिए, ऐसी ज्ञान के लिए प्यास हो। पक्षी मछली से सीखो, बंदर से सीखो, हंस से सीखो, मधुमक्खी से सीखो, कछुए से सीखो, अजगर से सीखो, हाथी से सीखो, हर एक से सीखो, कुछ ना कुछ सीखो, हर एक कुछ ना कुछ सिखा रहा है। दत्तात्रेय पाठशाला इधर लिया था एक बार। ठाठरी बिल्ली जिद्दी होती है बिल्कुल। उल्लू से सीखो, क्या सीखोगे? उसे कुछ दिखाई नहीं देता, यहां तक कि सूर्य भी दिखाई नहीं देता, चमगादड़ उल्टे लटके रहते हैं। भगवान सिखा क्या रहा है, हम फिर भी उल्टे लटके हैं चमगादड़ की तरह। सीखो, सबसे सीखो, जो जो दिखाई दे रहा है, जो जो सुनाई दे रहा है, सबसे सीखो। पक्षियों को देखो तो सोचो कौन से पंख है, मुझे भी उड़ना है इस पक्षी की तरह। उड़ने की इच्छा हो, उड़ने की इच्छा के लिए अशरीरी अवस्था चाहिए, वेटलेसनेस की आवश्यकता है। जितना भारी शरीर में डालोगे उतना उड़ना मुश्किल। विथ वेटलेसनेस यू एंटर डीपर इंटू मेडिटेशन। पूर्ण नदी का समंदर बनना है ना, आधी नदी का, आधा आधा क्या, बहुत बन लिया आधे, अब संपूर्ण आसमा बनना है। तो पर्यावरण की रक्षा, उसको दूषित नहीं करना है हमारी किसी चलन से। चॉकलेट खाया, फेंक दिया रैपर, किसको दिखता है? बस से जा रहे थे, जंगल में गए पिकनिक करने, दूषित कर दिया सब कुछ और आ गए, किसी ने देखा तो नहीं। हमारी वजह से किसी को हानि ना हो, किसी को नुकसान ना हो, रक्षा करनी है। हम रक्षक है पर्यावरण के, प्रकृति हमारा मित्र है, उसको अपना मित्र बनाना है, उस पर लड़ाई नहीं करनी है, उस पर जीत हासिल करने की कोशिश नहीं करनी। प्रकृति जीत मतलब ये नहीं कि प्रकृति को हरा देना, प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति को अपना मित्र बना देना, अपना दोस्त बना लेना, उसका दिल जीत लेना। प्रकृति सहायक हो जाएगी, हर चीज में सहायक होगी। प्रकृति ही स्वास्थ्य प्रदान करेगी तुमको, जो उसके गोद में बैठा है उसको कभी भी वो हानि नहीं पहुंचा सकती, कभी भी नहीं। कोई रोग, कोई बीमारी, कुछ नहीं हो सकता जो प्रकृति की गोद में बैठा है। अगला, प्रकृति को सकाश, प्रकृति को पवित्र करने के मार्ग बताओ क्या क्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैसे कैसे हम प्रकृति को शुद्ध करें? सबसे पहले संकल्प से। सबसे पहला मार्ग है प्रकृति को शुद्ध करने का, संकल्प करो प्रकृति के बारे में। जहां जहां प्रकृति के लिए संकल्प करो कि प्रकृति शुद्ध हो रही है, प्रकृति पावन हो रही है। बाबा क्या कहते हैं, प्रकृति को मुझे चार्ज करना है, प्यूरिटी के वाइब्रेशन देना है। दूसरा मार्ग है पवित्रता। हम जितने पवित्र बनेंगे प्रकृति उतनी पवित्र बनेगी। हम में यदि दूषित विचार है, हम में यदि ब्रह्मचर्य बार बार खंडित हो रहा है, तो ब्रह्मचर्य पवित्रता प्रकृति में भी कैसी रहेगी? ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मा समान आचरण, ब्रह्म में जो आचरण है वैसा, इतना शुद्ध। तीसरा मार्ग है दृष्टि। हमारी दृष्टि से हमें पवित्रता को पावन करना है। जंगलों में घूमो, झाड़ों को देखो, पत्ती को देखो, एक एक पत्ती को बैठकर दृष्टि दो, एक घंटा तो इसमें गुजर जाएगा, कई घंटे गुजर जाएंगे। बैठ जाओ झाड़ के पास और जो जो पत्ता दिख रहा है उसको प्यूरिटी देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। योग का योग भी हो गया, प्रकृति पावन भी हो गई, श्रीमत का भी पालन कर लिया, डालियों को सकाश दो, तो सकाश, उसके बाद में वृत्ति से पवित्र पावन करना, फिर शुभ भावना शुभ कामना से पवित्रता प्रकृति को पावन करना है, फिर शब्दों से पवित्रता पावन करना है। वो जो बर्मुडा टैंक, वो कौन सी जगह है, वहाँ पर एक जब गांव में झाड़ सूख जाता है या खराब हो जाता है, सारे गांव वाले आते हैं और झाड़ को रात भर गालियाँ देते, सुबह तक झाड़ गिर जाता है, क्योंकि वो हमारे वाइब्रेशंस कैच करता है। डॉक्टर इमाटू मासरू, उसने पूरी किताब लिखी है उसके ऊपर, हमारे संकल्पों का पानी पर क्या प्रभाव है। तो प्रकृति पर प्रभाव है हमारे संकल्पों का, हम प्रकृति को कुछ कहते रहे तो वो मानेगी हमारी बात। रोज एक झाड़ को, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रोज एक झाड़ से बातें करते रहो, उसे प्यूरिटी की किरणें देते रहो, शक्तियां देते रहो, उसके प्रति अच्छा सोचते रहो, उसके प्यूरिटी के वाइब्रेशंस तभी देते रहो जब बीज डाला, वो झाड़ का फल बहुत मीठा होगा। योगिक फार्मिंग, रोज खेतों को सकाश देनी है, खेतों पर चलना, कितना अच्छा फीलिंग आती है, खेत की मिट्टी, ये माटी भारत की माटी है। चाणक्य छोटा होता है, अपने मित्रों से कहता है इसे अपने मस्तक पर लगाओ, इस माटी को महात्मा बुद्ध और महावीर के चरणों ने पुनीत किया है, यह साधारण मिट्टी नहीं है। तो सकाश, पवित्रता, दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, बोल, अपनी वाणी से पवित्रता का वरदान दो प्रकृति को। रोज बोलना है, प्रकृति से बात करनी है, अकेला होंगे ना तो अकेले में बात कर सकते हैं प्रकृति से, वास्तव में बात करना है, जोर से बात करना है, ओम की ध्वनि करो। ओम ध्वनि जो है वो प्रकृति में गूंजती है, प्रकृति को बहुत अच्छी लगती है ओम की ध्वनि, ओम का संगीत जो है ना प्रकृति को बहुत बेहद पसंद है। इसीलिए जहाँ मंत्र जाप होता था कैसा वायुमंडल चेंज हो जाता है, जहाँ गायत्री यज्ञ देखा है, जिन्होंने देखा होगा, वो पूरा एरिया ऐसा शुद्ध हो जाता है, बहुत अलग सी फीलिंग आने लगती है वहां पर। और ये तो अंतिम यज्ञ है, शंख बजाना, उस दिन मुरली में था, कल की परसों की मुरली में था, ये अंतिम यज्ञ है। अब तक बहुत यज्ञ कर लिए, रामायण यज्ञ, ये यज्ञ, वो यज्ञ, ये अंतिम यज्ञ है। प्रकृति से जुड़ना, प्रकृति को फील करना, प्रकृति की रक्षा करना, प्रकृति से बात करना, प्रकृति को अपने अभिन्न अंग समझना। मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है, निधिया जहाँ सुधा की धारा बहा रही, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है, जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज में वे सब अंग में सजे है, वह देश कौन सा है, जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे है, वह देश कौन सा है, मैदान गिरी वनों में हरियाली लहरती आनंद में जहाँ है वह देश कौन सा है, जिसके अनंत धन से धरती फड़ी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। राम नरेश त्रिपाठी, वह देश कौन सा है, वो भारत है, इतना सुंदर देश, इतनी हरियाली जहाँ पर है, इंदे इतने प्रसून यहाँ पर है, इतने फूल यहाँ पर है, ये वैरायटी फूल यहाँ पर है। कभी ये देखा है बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाती है सुपर सेंस की, सेंस करो, एक एक चीज की जाकर सुगंध लो, झाड़ की एक एक फूल की जाकर सुगंध लो, धरती की जाकर सुगंध लो, नीचे लेट के मिट्टी की सुगंध लो, सिखाया जाता है सुपर सेंसेस डेवलप करने के लिए। देखो कि हवा कहाँ बह रही है, एक जगह बैठ जाओ और ये कहो हवा किस दिशा में बह रही है, इसका प्रयोग, एक जगह बैठ जाओ, देखो ये सुगंध किस, हर एक की सुगंध अलग अलग है, कौन सी वो सुगंध है, ट्रेस, पगडंडियों से गुजरो, ये पगडंडी कहाँ जाती है, या नई पगडंडियां निर्माण करो, अपना रास्ता। तो प्रकृति को सकाश देनी है कम से कम दो बार ऑफिशियली और सारे दिन भर कई बार। जब भी प्रकृति से गुजरो, कहीं से भी गुजरो, यहां से किचन तक जाओ, डाइनिंग तक जाओ, बीच में कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है प्रकृति का, उसको सकाश देते देते जाओ। एक एक पत्ते को सकाश दो, वृक्ष को सकाश, उसके छाल को सकाश, धरती को सकाश देते देते चलो, सब कुछ सकाश ही सकाश। तो प्रकृति को हमें देना है प्योरिटी की, सूरज को दो, चंद्रमा को दो, सितारों को दो, आकाश को दो, सबको सकाश देते रहो। तो ये हो गया दूसरा भाग, एक संरक्षण, दूसरा सकाश देना, तीसरा है प्राण ऊर्जा ग्रहण करना, प्राणिक न्यूट्रिशन, प्राणिक पर्सन बन जाना है, प्राणिक लिविंग इसको कहते हैं। जो लोग प्राण ऊर्जा पर जीते हैं उन्हें किसी भी स्थूल भोजन की आवश्यकता नहीं रहती। जब विटामिन एन मिल जाता है तो स्थूल भोजन, शाकाहारी भोजन, फिजिकल फूड खाने की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। इसलिए जब पहाड़ों पर जाते हैं लोग क्या करते हैं, पहाड़ों के बर्फ़ का पानी पीते हैं। सूरज जो रेन वाटर होता है, प्योरेस्ट वाटर है वो, उसी पे आराम से कई दिन रहा जा सकता है बिना किसी भोजन के, आराम से स्वस्थ हो जाए जा सकता है। तो ये प्राणिक ऊर्जा कैसे प्राप्त करें, प्राणिक न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करें, उसकी बहुत सारी विधियां तो हमने पहले ही देख ली है। सबसे पहला होता है सोलर प्राणा, सन प्राणा, जो हम प्राप्त करेंगे सन गेजिंग से, सूरज का प्राण। दूसरा है अर्थ प्राणा, जो हम प्राप्त करेंगे बेयर फुट वॉकिंग से। तीसरा होता है एयर प्राणा, जो हम प्राप्त करेंगे प्राणायाम से, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, जो अभी अभी इंग्लिश क्लास में हम सुन रहे थे 10-10 ब्रीदिंग, वो हम किसी और क्लास में लेंगे कैसे करें उस 10-10 ब्रीदिंग प्राणायाम, स्क्वेयर ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग, ये सब ब्रीदिंग छोटी छोटी टेक्निक है जो बैठे बैठे कहीं पर भी की जा सकती है, जिसमें और ये उपवास के पीरियड में, फास्टिंग पीरियड में एनर्जाइजिंग का काम करती है, एनर्जी भर देती है। तो एयर प्राणा, एयर प्राणा अर्थात इस हवा में प्राण ऊर्जा है। प्राणा इज द प्योरेस्ट फूड ऑन अर्थ, प्राणिक लिविंग, प्राणिक लिविंग, प्राणिक न्यूट्रिशन, प्राणिक फूड, सारे दिन भर प्राणिक फूड खाते रहो। प्राणिक फूड अर्थात एयर में प्राण है, सूरज में प्राण है, हवा में प्राण है, वो फूड, तो प्राणायाम। उसके बाद एब्जॉर्ब एनर्जी, केवल प्रकृति में बैठना और सोचो प्रकृति की सारी ऊर्जा मैं अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा हूं, बस इतना काम। कहीं पर भी बैठ जाओ, कहीं पर भी, मधुबन में, ज्ञान सरोवर में, पांडव भवन में, नीचे शांतिवन में, जितने हमारे कैंपसेस है, जितना सेंटर्स है, छत है वहां पर। हम तो यहाँ मधुबन की बात कर रहे हैं जहाँ इतनी खुली हवा पे, शायद ये उन लोगों के लिए कठिन होगा जो शहरों में रहते हैं जहाँ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग है, जहाँ सूरज तो दिखता ही नहीं कभी, पर आपको जहाँ चाहे वहाँ रहा है, ढूंढना पड़ेगा। अगर कोई लोग ऐसे जगह जाते हैं जहाँ इंडस्ट्रीज ही इंडस्ट्री है, फिर जीवन का एक निर्णय करना पड़ेगा कि हमें अपनी जगह बदलनी है। अगर जॉब ही ऐसा जगह करते हैं कि जहाँ केवल इंडस्ट्रीज है, निर्णय करना पड़ेगा जीवन का कि इस जॉब को छोड़ना है। अगर प्रकृति के समीप जाना है तो कुछ ना कुछ बड़े निर्णय तो जीवन में करने पड़ेंगे। अगर जॉब ही ऐसा है, कभी नाइट, कभी मॉर्निंग, कभी डे, छोड़ना पड़ेगा अगर प्रकृति का आनंद लेना है तो। और सबसे अच्छी बात, विलेजेस, विलेजेस की यात्रा करनी है, कभी कभी गांवों की एक यात्रा करनी, पूरा एक दिन गांव में बिताओ, गांवों के जितने चीजें, चक्का, चरखा, चरखा, एक व्यक्ति है साउथ में अभी भी है, वो रोज 23 किलोमीटर भागता है, उसका वीडियो है, आपको भेजेंगे। 23 किलोमीटर रोज भागता है और नंगे पाँव भागता है, और महात्मा गांधी का फॉलोअर कहता है अपने आप को, कम से कम मिनिमलिस्टिक लिविंग, खर्चा नहीं करना है, चरखा चलाता है घर में, बिना चप्पल के भागता है 23 किलोमीटर डेली मैंगलोर सिटी में। क्यों इतना प्यार है ये सब लोगों को प्रकृति से। और भागते भागते क्या होता है, भागते भागते इतने नए संकल्प आते हैं, चलते चलते लंबा वॉक चले जाओ, डेली का कितना है स्टेप्स, कितने हैं मंजू बहन डेली के आपके, तो टोटल स्टेप्स कितने हैं, हाँ कितना, 18,000 स्टेप्स टोटल कितने हैं, टोटल स्टेप्स ब्राह्मणों के कम से कम 15,000 से 20,000 तो होने ही चाहिए, 15 से 20 हज़ार डेली के स्टेप्स तो कंपलसरी होने ही चाहिए, तब कहा जाएगा स्वस्थ है। और अभी लॉकडाउन से, अब लॉकडाउन के पीरियड में हम अपना बता रहे, हमारे लॉकडाउन में ही स्टेप्स 12 से 14 हज़ार डेली के, बाकी दिन तो 21 हज़ार फिक्स्ड है। 21 को क्रॉस ही करते, 21 हज़ार मतलब कितना किलोमीटर हो गया, 14 से 15 किलोमीटर हर दिन, सुबह से लेकर रात तक पूरा चलना, रिकॉर्डिंग होते रहता है, या तो मोबाइल या तो वॉच जिसमें भी, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। चलना, चलना सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। हिप्पोक्रेटिस फादर ऑफ द मेडिसिन ने कहा है वॉकिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन, इतने सदियों पहले कह चुका है, वॉकिंग इज द बेस्ट मेडिसिन, चलते रहना। और चलोगे वो भी प्रकृति के सानिध्य में, फिर तो क्या बात, क्या क्या दिखता है चलते चलते, कभी फूल, कभी झाड़ियाँ, कभी पर्वत, कभी पहाड़, कभी पक्षी, कभी गिलहरी, कभी आम, कभी गिरे हुए आम, करवंदे, क्या कुछ दिखता है। तो बैठ जाना और सोचना प्रकृति की सारी ऊर्जा मुझ में आ रही है। फिर ईट लिविंग फूड खाना है, जिसमें अत्यधिक प्राणिक ऊर्जा है वो है जो लिविंग फूड है, जिस जैसे ही उसको जला दिया जाता है, आग पर डाल दिया जाता है, उबला जाता है, स्टीम दे दी जाती है, उसमें जो प्राकृतिक ऊर्जा है, उसमें जो प्राणिक एनर्जी है वो कम हो जाती है। इसके लिए लिस्ट निकालो, हाई प्राणिक डाइट, हाई प्राणिक फूड कौन कौन से है। फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा प्राणिक ऊर्जा है, और ओवन में जो बनाया जाता है उसमें सबसे कम डेड फूड है वो। ड्राई फ्रूट्स में प्राणिक ऊर्जा है परंतु कम। सबसे ज़्यादा प्राणिक ऊर्जा होती है सनलाइट, जिसमें ट्रैप्ड हुआ है, वो सारे फल जो 24 घंटे में खराब होने लगते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्राणिक ऊर्जा है, बहुत हाई प्राणिक ऊर्जा। और वो प्राणिक ऊर्जा लेते समय, वो फल खाते समय कितनी आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि हम हाई प्राणिक, जितनी प्राण ऊर्जा अपने अंदर भरेंगे, प्राणिक लिविंग हो हमारा, प्राणिक न्यूट्रिशन हो हमारा, प्राणिक लिविंग ऑन लाइट इसको कहा जाता है। ये जैसे जैसे जितना बढ़ाएंगे, आप आइसक्रीम कितना भी खाओ पेट कभी भरता है, कभी नहीं भरता। प्राणिक फूड आप ज़्यादा खा ही नहीं सकते, जितना खाना है, जितना जरूरी है उतना ही खाएंगे। आइसक्रीम कितना भी खा लो कभी पेट नहीं भरता, और प्राणिक फूड खाने के बाद एक पॉइंट आ जाता है कि अब मन कहता है कि नहीं बहुत हो गया, अब नहीं खा सकता मैं, पेट भर चुका है, सिग्नल आता है स्टॉप। तो प्राणिक फूड जितना खाएंगे उतनी प्राण ऊर्जा हमारे अंदर भरेगी, इसलिए अपने आहार में कम से कम 3 बार जो भोजन कर रहे, एक बार तो प्राणिक फूड कर दो, 2 बार का जो खा रहे हो खाओ, पर 1 बार का प्राणिक फूड कर दो, हो सके तो बाद में धीरे धीरे ये जो 2 है, 2 में से 1 को प्राणिक फूड कर दो, प्राणिक अर्थात प्राकृतिक। और मनुष्य ने जो कुछ किया है, क्या किया है उसने, क्या किया है उसने, सोचो, कृषि के लिए उसने क्या किया, वन्य वन को उसने कृषि में रूपांतरित कर दिया, जब वनों को उसने कृषि में रूपांतरित किया तब वनों के जीव जंतुओं को उसने नष्ट कर दिया, कितनी बड़ी हिंसा कर दी कृषि निर्माण में, एक। दूसरा, कृषि के लिए उसने नदी के प्राकृतिक बहाव को रोक दिया, नदी की प्राकृतिक जो दिशाएं थी उनको मोड़ दिया अपने फायदे के लिए, क्या कर दिया उसने, नदियों के साथ खिलवाड़ किया अपने फायदे के लिए। और क्या किया उसने, खेती की, बहुत कुछ किया, उसमें कीटनाशक डाल दिए, क्या कुछ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स डाले, क्या कुछ कर दिया उसने। जो फल भी हम खा रहे, ये भी नहीं कहो कि फल बहुत अच्छे हैं, उसमें भी ट्रेसेस ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स है। इसके लिए जो भी फल लाओ उसको पहले पानी में डुबो के रखो, कई लोग उसको नमक के पानी में रखते और फिर सादे पानी से धोते, ताकि उसके वो ट्रेसेस जो है, परंतु जिसके शरीर में प्राण ऊर्जा ज़्यादा है उनको इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का भय उनको है जो प्राण ऊर्जा के डाइट कम लेते हैं, उनको बहुत भय है उससे। तो प्राणिक फूड लेना है, अधिक से अधिक प्राणिक फूड, और हफ्ते में 1 दिन तो ऐसा निश्चित करके रखा है कि हम केवल प्राणिक डाइट ही लेंगे जिसमें प्राण ऊर्जा भरपूर है। और उस दिन अमृत वेला देखो कैसा होता है, उस दिन बाबा से योग देखो कैसा होता है, उस दिन अशरीरीपन का अनुभव देखो क्या होता है, उस दिन थकावट होती है कि नहीं, नींद, थकावट सब मुक्त, फिर उसके बाद में चंद्रमा से प्राण ऊर्जा लो, गैलेक्सी से प्राण ऊर्जा, स्टार गेजिंग करो रात में, मून गेजिंग करो, माउंटेन गेजिंग करो, उसके बाद में झाड़ को हक करो, उसके बाद में विंड से एब्जॉर्ब करो, ये जो हवा बह रही है ना उससे ही प्राण ऊर्जा ले लो, फिर मेडिटेशन करो उससे प्राण ऊर्जा। राजयोग से ऊपर कोई मेडिटेशन नहीं है संसार में। इसकी भी हम विधि देखेंगे कि राजयोग से प्राणिक ऊर्जा कैसे भरे अपने शरीर में, अगला जो चैप्टर होगा उसमें। फिर थाईची और शिगोंग से प्राण ऊर्जा भरो, फिर उसके बाद में शरीर में जो चक्र है, एनर्जी सिस्टम्स है, उसमें हमारे शरीर में जो प्राणिक ऊर्जा है इस एनर्जी चैनल्स में फ्लो करती है, ईड़ा पिंडरा सुषुम्ना, और वो सारे एनर्जी चैनल से बैठ जाओ और सोचो कि प्राण ऊर्जा मेरे शरीर में फ्लो कर रही है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कुंडलिनी जागरण सहज हो रहा है। कुंडलिनी जागरण कोई किसी योगा और एक्सरसाइज से नहीं होता है, वो तो मन में होता है। उसके बाद में विजुलाइज करो वो फ्लो ऑफ एनर्जी अपने बॉडी में, अपने सिस्टम में। और अगर ये सब से भी नहीं होता है तो कई बार प्राणिक हीलर्स होते हैं, जिन लोगों में प्राण ऊर्जा ज़्यादा है उनसे प्राणिक ऊर्जा हम ले सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकती है, उसको कहते हैं प्राणिक हीलिंग। जो जिसमें हीलर होता है एक, वो बिना टच किए पेशेंट को ठीक करता है, वो प्रॉपर टेक्निक है उसकी, दो दो तीन तीन दिन के कोर्सेस होते हैं प्राणिक हीलिंग के। तो ये सारी मेथड्स है जिसमें हम प्राणिक न्यूट्रिशन लेंगे। तो आज हमने क्या क्या देखा, एक तो प्रकृति का नाश नहीं करना है, उसका संरक्षण करना है एक, दूसरा हमने देखा है प्रकृति की, उसको क्लीन रखना है, दूसरा हमने देखा कि प्रकृति को सकाश देनी है, प्रकृति को पावन बनाना है, तीसरा प्रकृति से हमें कुछ लेना है, तो सारे दिन भर लेना है, सुबह शाम उसको देना है। तो ये आदान प्रदान चलता रहे, ये एक बैलेंस चलता रहे, हम उससे ले भी रहे दे भी रहे। जैसे सन गेजिंग करते हैं, सन गेजिंग करते करते हम उससे ले रहे, और जब लास्ट पीरियड हो सन गेजिंग का, जब अब सूरज डूबने ही वाला है, तब उसको प्योरिटी की किरणें देना है। और ये सोचना है कि मेरी पवित्रता की किरणें परमात्मा से, बाबा से पवित्रता की किरणें मुझ में पवित्रता की किरणें सूरज में, और सूरज से पवित्रता की किरणें अब पूरे विश्व में जा रही है, एक एक कण कण पावन हो रहा है। तो एक तरफ हम सकाश भी दे रहे हैं, सूरज से ले भी रहे और सूरज को दे भी रहे। तो आज अभी जैसे सूरज सन गेजिंग, अभी तो सूरज 3 दिन से गायब है, सूरज बादलों ने ढक लिया है, पर जरूरी नहीं कि सूरज नहीं है तो चलेगा, धरती तो है, हवा तो है, हवा से प्राण ऊर्जा लो, बेयरफुट वॉकिंग से प्राण ऊर्जा लो, कहीं से भी पत्थरों से प्राण ऊर्जा लो, कहीं से भी ली जा सकती है प्राणिक एनर्जी। तो लेना है बस, हमारा जीवन प्राणिक न्यूट्रिशन पर चले। वो फिजिकल न्यूट्रिशन बहुत ले लिया, फॉरेन न्यूट्रिशन बहुत ले लिया, अब प्राणिक न्यूट्रिशन लो। और जैसे जैसे प्राणिक न्यूट्रिशन लोगे पता चलेगा भूख उसकी जरूरत ही नहीं है, उसकी बहुत कम आवश्यकता है, और शरीर में एनर्जी लेवल बहुत हाई है, बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ एनर्जी, थकान है ही नहीं, नींद आधा घंटा लेट लिया तो उठने के बाद ऐसा लगता है 4 घंटा हो गया, योग निद्रा का भी अभ्यास चालू है। ये सारी विधियां 21 की 21 आज की 8वीं थी, ये हमें ले चल रही है एक ऐसे जीवनचर्या की ओर जहां हमारा जीवन प्राण ऊर्जा से चलेगा। ओम शांति। हाँ वो तो है, दूसरी और एक चीज, इस पर तो एक क्लास हो सकता है पूरा, जो बीज है उनको कभी भी नष्ट नहीं करना है, बीज जो होता है ना, बीज उसको कभी भी नष्ट नहीं करना है। परंतु इसमें बहुत बड़ी फिलॉसफी छिपी हुई है, अगर ये अभी सबको कह दूँ तो सबको अटेंशन हो जाएगा, सबको खाना पीना बंद हो जाएगा, कहेंगे ये तो बहुत भारी काम है। बीज जो है ना, गेहूं क्या है, बीज, अनाज क्या है, सारे बीज है। बीज को नष्ट करना अर्थात टू किल अ सीड इज टू किल अ जनरेशन, एक पूरी वंश को नष्ट करना है, एक पूरे वंश को। इसके लिए अगर आप वाटरमेलन खाते हो, उसका जूस बनाते हो, तो बीज पहले निकाल दो, बीज को नहीं खाना है, बीज को निकालते जाओ। और एक चीज, लास्ट बात, चाहे हम कितना भी पवित्र भोजन खाएं फिर भी वो दूषित तो है ही, क्यों, जिस खेत में जिस किसान ने उसको पकाया उसी रात उसने वहां पर दारू पी होगी। एक सन्यासी आता है, एकदम परम तपस्वी सन्यासी, एक किसान उसके लिए भोजन लेके आता है, महाराज आपके लिए, साधु कहता है मैं नहीं खाऊंगा, जाओ यहां से, युवा सन्यासी है तपस्वी, वो कहता है क्या गलती हो गई, ये तो हमने आपको भोग लगाने के लिए लाया, बहुत पवित्र है। वो कहता है नहीं, तुम्हारे खेत की जो बैल है उसने कल रात बाजू वाले किसान के खेत को नष्ट किया था, मैं नहीं खा सकता, पवित्र है। मैं नहीं खाऊंगा, इतनी प्यूरिटी का ध्यान, इतना भोजन के परहेज। इसीलिए एक ही मेथड है जो भोजन को पवित्र कर सकती है, ओनली वन मेथड। क्योंकि हमें क्या पता, कितना भी फल ही खा रहे हम, परंतु उस फल में भी अपवित्रता है कि वो किसान, क्योंकि वहां पे वो विकार उस खेतों में, सब्जी मंडी कहां से आए। एक ही मेथड है जो अल्टीमेट मेथड है जो भोजन को पवित्र करेगी, और वो है बाबा को भोजन से पहले भोग लगाना, समर्पित कर देना, उसकी दृष्टि उस पर पड़ने दो और कॉन्शियसिटी। ये एक मात्र लास्ट एंड द अल्टीमेट मेथड है प्राणिक लिविंग की, इसके ऊपर और कोई मेथड नहीं है। क्योंकि चाहे कैसा भी खाओ वो अपवित्र ही है, वो कलियुगी है। एक ही मेथड है, भगवान को अर्पित कर दो। ओम शांति।
प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, सबका कायम इन्हीं से रहता, बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से नीर रगों में बहता, बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से नीर रगों में बहता, खूबसूरती इन सब की आंखों में सदा उतरती, खूबसूरती इन सब की आंखों में सदा उतरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, के गोद में अपनी पाले धरती माता। माँ बन कर के गोद में अपनी पाले धरती माता, बन कर पिता अंबर भी बाहों में सबको समाता। माँ बन कर के गोद में अपनी पाले धरती माता, बन कर पिता अंबर भी बाहों में सबको समाता। सूरज की किरणों से है ऊर्जा सभी में भरती, सूरज की किरणों से है ऊर्जा सभी में भरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। सागर की गहराई में रत्नों की अनोखी खान, टिके हैं जिस पर चांद सितारे, वो है आसमान। सागर की गहराई में रत्नों की अनोखी खान, टिके हैं जिस पर चांद सितारे, वो है आसमान। पल पल इन्हीं के सदके हैं जिंदगी निखरती, पल पल इन्हीं के सदके हैं जिंदगी निखरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी।